क्या क्या भी बुरा हो गया, तलाक भी हो गई, खुला भी हो गया, ईला भी हो गया, इद्दत की बातें, बेवकी की। अब यहां लिख लीजिए आयत नंबर 236 से, हक मेहर। अब इसका भी थोड़ा सा तस्करा है, बहुत सिंपल है। ये आयतें पढ़ते वक्त अगर आपकी तवज्जो इधर उधर चली गई ना, फिर आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इसकी सारी तफसीर इसकी आयतों के अंदर है। फरमाया, ला जुनाह अलैकुम, नहीं गुनाह तुम पर, इन तल्लक्तुम अन्निसा, अगर तुम तलाक दो औरतों को, कब, मालम तमस्सू हुन्ना, जबकि नहीं तुमने छुआ उनको, किनाया है जिमा का, यानी औरत का मर्द से ताल्लुक कायम नहीं हुआ। आप रख लीजिए कि शादी हुई, रुख्सती नहीं हुई, निकाह हुआ और रुख्सती नहीं हुई। कई जगह ऐसा होता है, एक मुल्क में रहते हैं, दूसरे में रहते हैं, चले निकाह कर देते हैं, निकाह कर दिया, रुख्सती से पहले कोई बातें बीच में खुल गई, लगा कि ये मामला नहीं चलेगा, अब तलाक देने की जरूरत पड़ी तो दी जा सकती है। पहली बात जहां समझ आई, सिर्फ निकाह हुआ हो, अभी रुख्सती नहीं हुई, तो तलाक देने की नौबत आ जाए तो दी जा सकती है। और इस ताल्लुक को कहते हैं खलवत सहीहा, यानी रियल खलवत। और खलवत क्या होती है? तन्हा होना। और इसकी भी बहुत डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप आगे चले। औ तफरीदू लहुन्ना फरीदा, नंबर टू लिख लें। पहली सिचुएशन ताल्लुक भी नहीं हुआ, और दूसरी बात यह है कि हक महर कितना देना है ये भी नहीं हुआ। ये बात हुई थी कि हक महर अदा किया जाएगा, पर ये नहीं था कितना। बाज़ वाले लोग कहते हैं जितना इसकी बहनों का होगा उतना इसका होगा, जितनी इसकी फुफी का था इतना इसका होगा, खाला का था। याद रखिए, हक महर का जिक्र लाजमी है, अदायगी फौरी लाजमी नहीं। तो ये फर्स्ट केस क्या है कि बीवी से सिर्फ निकाह हुआ और निकाह के वक्त महर की मकदार मुतय्यन नहीं हुई, तो तलाक देना चाहे तो दे सकता है। फिर क्या किया जाए इद्दत की सूरत में, या लिख लें तलाक हो जाए तो फिर क्या किया जाए? वह मत तेऊ हुन्ना, और इनको कुछ खर्च दे दो, औरतों को कुछ ना कुछ जरूर दे दो इस सूरत में भी, गो के हक महर तुम पे लाजिम नहीं है। और दूसरी बात लिखिए, जब सिर्फ निकाह होता है तो फिर हक महर औरत का हक नहीं होता, कोई देना चाहे अपनी मर्जी, कुछ दे दे ऊपर से, कुछ अलग से दे दे, कोई हर्ज की बात नहीं। क्या उसका मेयार है? अलल मूसी, वुसत वाले पे, यानी दौलतमंद वुसत है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जिसके पास बहुत माल है, अल्लाह ने उसको कुशादा हाल किया हुआ है, वो अपनी कदरुहू, अपनी कुदरत के मुताबिक दे दे। वलल मुख्तरी कदरुहू, और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दे दे। दोनों सूरतों में ठीक है। मुराद ये कि मर्द अपनी तनख्वाह को देख ले, माल को देख ले, कारोबार है, बिजनेस है, गाड़ी है, नहीं तो फिर जो दे सके, अगर अमीर है तो गाड़ी दे दे उसको, क्या फर्क पड़ता है, औरत का दिल दुखी है, सही हो जाएगा। और कुछ नहीं तो उसको कोई फोन दे दे, कोई उसको बहुत देना चाहता है घर दे दे। देखिए, मर्द कंपनसेट कर रहे हैं ना कि मैंने एक औरत का साथ निकाह किया था, अब इसको छोड़ दिया, तो चोट तो लगती है। करना के मताम बिल मारूफ, जो खर्च के मुवाफिक हो, यानी ये साजो सामान जो दुनिया का है भले अंदाज से दिया जाए, ऐसे ना दी जाए कि खैरात दी जाती है। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये हक है मुहसिनों पर, जो लोग एहसान करते हैं एक दूसरे पर, उनके हक में ये चीज बहुत जरूरी है। जरा देखिए, हमारे यहाँ शादी के मौके पे पूछते हैं क्या दिया, मुंह दिखाई में क्या दिया, कोई तलाक के वक्त में पूछते हैं क्या मिला, इसको कहते हैं मुतय तलाक, मुता फायदा उठाना। यहां लफ्ज जो मैंने देखे ना इस आयत में, मता नया है, दो दफा आया है, इसको भी आपके सामने खोलने की कोशिश करती हूँ। क्या फरमाया कि तुम जब किसी के साथ इस तरह का मामला करो, वो औरत जो के इस सामने मामले में है, तो तुम उसको थोड़ा सा दे दो, मुता दे दो, बल्कि ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके फिर इनमें सब में कॉमन लफ्ज आएंगे तो वो होगा। बस अभी इतना समझ लें कि आपने एक सिनेरियो देख लिया, ठीक है, हो गई बात। अब आयत 237 पे हम जा रहे हैं, इसमें लिखिए सेकंड केस, वइन तल्लक तुमू हुन्ना, और अगर तुमने इनको तलाक दी औरतों को, मिन कबली अंतमसू हुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको हाथ लगाया, मुराद है कि उनसे ताल्लुक तुम्हारा कायम हुआ, वकद फरत तुम लहुन्ना फरीदा, और तुमने उनका हक मेहर मुकर्रर किया था पहले से। इसमें क्या फर्क है? पहले में हक मेहर की तादाद या उसकी क्वांटिटी नहीं की थी, यहां वो की थी, अब क्या दिया जाएगा? फनेसुमा फरतम, आधा हक महर जो तुमने तय किया था। 1 लाख रुपया हक में रखा था, रुख्सती से पहले तलाक होने की नौबत आ गई, तो 50,000 स्टिल मर्द देगा। क्यों? क्योंकि औरत के ऊपर ठप्पा तो लग गया ना, ये एक किस्म की कॉम्पनसेशन होती है। हाँ मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इल्लन याफू ना, हाँ मगर ये कि वो औरतें ही माफ कर दें, यानी वो औरत के लो मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनी तो मुझे तुम्हारा आधा भी नहीं चाहिए, तुम रखो मैं नहीं लेती, पहली सूरत। और याफू अल्लसी भी यदि उकदतुन निकाह, या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा। किसके हाथ में निकाह की गिरा होती है जी? वली कहाँ से आ गया? देखिए मैं यही लफ्ज़ सुनना चाह रही थी ताकि आप बोलें तो मैं फिर आपकी इसलाह करने की कोशिश करूं। लिखिए, निकाह होने से पहले पहले वली की जरूरत होती है, अहम है। जो ही एक लड़की का निकाह एक लड़के से हो गया, अब उसके माँ या बाप को कोई इख्तियार नहीं कि वो उसको तलाक दिलवाएं, वो रखे, बल्कि इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। यहां मुराद है उकदतन निकाह की, मर्द शोहर निकाह का कायम रखना या ना रखना किसके हाथ में? शोहर के। तो मुराद है कि बीवी कह दे मैंने आधा भी नहीं लेना, तो मर्द कहता है नहीं नहीं मैंने आधा नहीं पूरा देना है। ये कहां होगा जहां इंसानियत होगी? वन ताफू, और ये कि तुम दरगुजरी कर लो अकरबुल तकवा, ये तो तकवा के ज्यादा करीब है। यानी वही बात है कि आपस के मामलों में जमा तफरीक में मत पड़ा करो, गिन गिन के रोटियां ना पकाओ के चार आए हैं तो 3.5 ही काफी हैं क्योंकि एक तो शायद नहीं खाएगा, ये नहीं करना चाहिए। खुला हाथ, देखिए अल्लाह को जो चीज पसंद है ना, तो खुला अफ, दरिया दिली, देने में, लेने में, माफ करने में, बख्शने में। अच्छा हमारी दरिया दिली किस में? तानों में, इल्जाम में, झगड़ों में। आप जरा सोचें, इस वक्त हम तलाक के इशू पढ़ रहे हैं और हर दूसरी आयत के बाद में कहीं तकवा, कहीं फजल, कहीं कुछ, क्योंकि यही चीज जोड़ती है। आपस के ताल्लुकात में जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, कभी हक भी नहीं दे सकते, एक्स्ट्रा देना तो कहाँ की बात है। तो फरमाए वला तंसवुल फजल बैनकुम, और आपस में एक दूसरे पर फजल ना भूला करो, यानी एक दूसरे के साथ एहसान किया करो, बेहतरीन तरीके से काम करो। इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला हर उस चीज को जो तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। क्या बात सारी समझ आई? यहाँ पे मैं इसका खुलासा कर देती हूँ कि जब निकाह हुआ, रुस्ती नहीं हुई, हक मेहर का तस्करा तो था, मिकदार मुय्यन नहीं थी, तो क्या होगा तलाक की सूरत में? औरत को मर्द अपनी खुशी से कुछ भी देगा, मुतः तलाक कहते हैं इसको। हजरत हसन बिन अली थे तो उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दी। तलाक के बाद उन्होंने उसको 10,000 दिरहम भेजे, और आपको पता है दिरहम चांदी का सिक्का होता है, बहुत बड़ी रकम थी। तो उस औरत ने उस पैसे को देकर एक शेर पढ़ा था कि मताउन कलील लिल हबीबिल मुफारिक, कहती इतने प्यारे दोस्त के जुदा होने के मुकाबले में तो ये बड़ी हकीर रकम है। यानी वो प्यार करती थी, सीरियस थी, संजीदा थी, उसको दुख हुआ। जब हसन को ये बात पता चली ना तो रो पड़े, कहने लगे अगर मैंने इसको 3 तलाकें ना दी होती तो मैं रजू कर लेता। कि वो वाकई इस चीज को इतना सीरियस लेगी कि इतने पैसे देखकर भी उसको लगता है कुछ नहीं। तो हकीकत है पैसे रिश्तों का नेमल बदल नहीं होते, लेकिन अच्छी यादें देकर रुख्सत करो। ताने इल्जाम बातें नहीं, और ये ना कहो कि अब इसके हम आगे भी नहीं कहीं होने देंगे। हमारे कल्चर में तो ये होता है, अब देखते हैं कहाँ करते हैं, सू में रहते हैं कहाँ, रिश्ता और पहले ही पहुंच जाएंगे भाई। ठीक है कर ले आपने जो करना है, कल आपके ऊपर बोझ बनेगा। तो ये सारी चीजें बता के हमें बता दिया गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता और किसी को बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया जा सकता, इसका फैसला बंदा खुद ही करेगा। क्यों दिया जाए ये मुतअल्लिक़ तलाक? कशीदगी को कम करने के लिए, तलखी कम हो जाए, औरत की दिलजोई होगी। औरत कुछ अरसा बीच में अगर दूसरी शादी नहीं कर पा रही तो उसके लिए कुछ ना कुछ सर्वाइवल हो जाएगा, ये भी फायदा है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मता का लफ्ज यहाँ जो आता है बार बार, मता कहते हैं आम जरूरत की चीजें, जो आपकी मेरी जुबान में ग्रोसरी कह लें या हाउस होल्ड कहते हैं ना जिसको इंग्लिश में, आप उसको मता कह लीजिए। यानी ये वो चीज है कि जिसके बाद वाकई एक इंसान उस चीज से फायदा उठा सकता है। रोजमर्रा की चीजें हैं, तो बताया ये जा रहा है कि दुनिया की चीजें चंद दिन की हैं, इसको तुम हमेशा की चीज ना समझो। अल्लाह सुबहाना ताला तुम्हारे ऊपर नजरें रखता है, तुम इस काम को करो और अल्लाह के कुर्ब को पालो। चलिए ये भी बात हो गई। इसके बाद आप देखिए इस एक आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें कितनी दफा देखिए कि दरगुजर और बर्दाश्त का हुक्म दिया, कई बार हुक्म दिया। याद रखिए कि ये वसफ आता ही लोगों में कब है, जब उनको इस दुनिया की हकीकत की समझ आती है, और जब दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है ना, फिर बात समझ आती है। फिर एक चीज देखिए, आपने शायद गौर किया कि नहीं, कि यहां हक महर के लिए लफ्ज क्या आया है, कद फरद तुम लहुन्ना फरीदा। अब ये दोनों लफ्जों को इकट्ठा देख लेते हैं। फरद कहते हैं किसी सख्त चीज को काटना, ये जो हम कहते हैं ना फर्ज नमाज, वो भी यही है। फर्ज नमाज कह के जब फर्ज अदा कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज कट गई, और हम अपने वक्त में से कुछ हिस्सा निकालते हैं तो फिर अलग करते हैं ना। तो फरीजा फिर क्या हुआ, मुकर्रर हिस्सा, मुआयन और मुकर्रर हिस्सा। हक महर को फरीजा कहकर यहां ये तक बता दिया कि ये फर्ज है। आगे पढ़ेंगे हम तरके के लिए भी नसीबम मफरूजा का लफ्ज आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके लिए सदुका का लफ्ज आएगा सूरत निसा में, यहां फरीजा का लफ्ज आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको अहम समझना चाहिए जिंदगी में, ये मामलात ऐसे नहीं। अच्छा, आज हमारे कल्चर में क्या होता है, या फिर वो बात कर लूं कहीं बाद में, आप कहें कि ये तो बताया ही नहीं, शरई हक महर कितना होता है, बोल दें सारे। शाबाश जी, आपने 32 रुपए। शर्मा क्यों रहे? अच्छा, इसको नॉर्वेजियन क्रोनसी में चेंज करें, 32 रुपए कितने क्रोन बने? हाँ, 2 क्रोन, 2.5 क्रोन। 2.5 क्रोन का यहाँ क्या आता? कुछ भी नहीं आता। तो आप देखें, ये औरत के साथ मजाक है, ये गलत फहमी है। शादी शरई नहीं करते, हक में शरई चाहिए। ये 33 रुपए 12 आने की जो बात है, ये किसी दौर की बात है, इस पर हम इंशाल्लाह सूरत निसा में डिटेल से बातें करेंगे। वैसे मुझे पता है तब तक आपने भूली जानी है, लेकिन यह है कि इस्लाम में क्या अलमोसी कदर हो, तंगी वाला तंगी के मुताबिक, ज्यादती कमी ज्यादा जिसके पास है वो ज्यादा अला दे दे। बहरहाल, अब यहाँ जी ये तलाक का इशू चल रहा था, हम बड़े सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये हो गया वो गया, आगे बिल्कुल एकदम मौजू पलट गया, और ऐसे लगता है कि कुरान पाक में तो कोई रब्त ही नहीं है। कैसे, आइए देखिए। हाफिजु अला सलावात, हिफाजत करो नमाजों की, वस सलातिल वुस्ता और दरमियानी नमाज खासतौर पर, वकूमु लिल्लाहि कानितीन और अल्लाह के लिए फरमा बरदार बन के खड़े हो जाओ। ये नमाज की बात कहां से आ गई? फिर अगली आयत में तो कुछ और है, फाइन खिफ तुम फरिजालन और रुखबानन, फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल चलो या फिर सवार हो, यानी हर हाल में नमाज पढ़ो। फैजा अमिन तुम फजकुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो वैसे अल्लाह का जिक्र करो जैसे कि उसने तुमको सिखाया, मालम तकुनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। चलिए ये बताइए कि फिर आगे फिर दोबारा इद्दत ही की बातें और पीछे भी, बीच में नमाज की बात क्यों आ गई? क्योंकि जब घरों में ये इश्यूज छिड़ जाते हैं ना, सबसे ज्यादा मुतासिर नमाजें होती हैं। एक वजह, खानदान को तो मौजू मिल गया ना, अब क्या होगा, फोन पूछ रहे हैं, कोई आया फोन, कुछ लगा पता, ये हो गया। वो बीबीसी लंदन को भी मेरा हाल है, ऐसे नुमाइंदे नहीं मिलेंगे जो हमारे खानदान में होते हैं। अब ये पता चला है, मैंने ये सुना है, तुमने पूछा, अच्छा कुछ पता लगा तो मुझे बताना, मैंने फोन खुला ही रखा हुआ, ये जरा मैं फटाफट नमाज पढ़ के आई, ये तरीका होता है। तो नमाज ना छोड़ो। दूसरी बात, एक ताल्लुक तो टूट रहा है, अब दूसरा ना तोड़ो। देखिए, मैंने पीछे आपको बताया था, शायद भूल गए होंगे, नमाज के जो मुख्तलिफ रूट्स है ना, जिसमें जलाना, आजजी, वहां मैंने बताया था कि सला के सिला, ये हाथों को देखना, सिला वसल जोड़ना। नमाज अल्लाह और बंदे के बीच का ताल्लुक है। पीछे आप 2 दफा पढ़ चुके हैं, वस्ताइन बिस सबरी वसला, पहले पारे में बनी इसराइल के तनाजर में, और इस दूसरे पारे में उम्मत मुस्लिमा के तनाजर में, क्या पता चला कि इस टूटे हुए वक्त में जो चीज तुम्हें जोड़ेगी वो नमाज है। देखिए, इंसानी ताल्लुकात में सबसे वर्स्ट चीज तलाक है। दिल टूटता है, दिल खराब करता है, जितना मर्जी झगड़ा हो, जब तलाक मिलती है तो फिर औरतें मैंने देखा रोती हैं, या मर्द भी जब पहले देना चाहते हैं धमकियां देते हैं, जब दे देते हैं तो फिर कहते हैं कुछ अच्छी हुई थी। तो ऐसे वक्त में नमाज, मदद मांगो, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला। इससे फायदा क्या होगा कि नमाज फिर बंदे को रोक लेगी बाकी गलत चीजों से। एक तीसरा फायदा भी है, झगड़ा हो रहा है, दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं, उधर से बात उधर, हो सकता है हाथापाई शुरू हो जाएगी, फौरन उसके बाद हैया अलसला हैया अलफला, होती भी लड़ाई रुक जाएगी, वो मच मर जाएगा ना, जोश था भी करते हैं, ये करेंगे वो कर देंगे। जब बीच में नमाज का ब्रेक आ जाता है ना, तो वो जो जज्बात और गुस्सा और उल्टी सिल्टी बातें दिमाग पे सवार होती हैं ना, वो सारी निकल जाती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहां नमाज का तذکرہ कर दिया। हाफिजू क्यों कहा, हिफाजत क्यों करें भाई, ये कोई नमाज कोई चोरी होने वाली चीज है? तो लिखिए लफ्ज हाफिजू सलात से पता चलता है कि नमाज कीमती है। आप आर्टिफिशियल जेवरों की हिफाजत नहीं करते या कम करते हैं, डायमंड सोना चांदी संभाल संभाल के रखते हैं, कीमती है। हाफिजू का लफ्ज इसलिए आया, ये भी तो कहा जा सकता था कि नमाज पढ़ो नमाज कायम करो, हिफाजत क्यों निगेबानी करो, ये छोटी छोटी बात पे ना छोड़ा करो। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि हा फा और जोए लफ्ज है ना, एक डिक्शनरी में लिखा है कि जिन अल्फाज में हा और फा इकट्ठे आ जाए, इसमें जमा करने का मानी पाया जाता है, महफूज करने का, और इस चीज को मुंतशिर ना होने दे। जैसे हाफिज, हाफिज कौन होता है, जो शख्स किसी चीज की निगेबानी करता है, मुहाफिज। ये जो कुरान के हाफिज होते हैं ना, वो भी इसलिए हैं, अल्लाह ना करे कभी दुनिया से सारे कुरान खत्म हो जाए तो हुफाज के सीनों से कुरान सुन के दोबारा लिख लिए जाएंगे। इसी तरह भाई इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, सूरह तारिक की आयत है, आयत नंबर 4 में, हर नर शख्स पर निगेबान मुकर्रर है। तो हिफाजत करो, अल्लाह ताला ने इसको रखा है, मुराद ये छोड़ो नहीं। अब आप और मैं जरा सपने ऊपर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में कोई तलाक और इस तरह का इशू नहीं चल रहा, क्या मैं नमाज की हिफाजत कर लेती हूँ? छोटी छोटी बात पे जो चीज पीछे जाती है वो क्या है? अभी पढ़ती हूँ, बाद में पढ़ती हूँ। और जो दिन आजकल चल रहे हैं, अगर आपने अजान सुनते ही नमाज ना पढ़ी, मैं यकीन से कह सकती हूँ आपकी अगली नमाज आ जाएगी। हर दिन मुझे कोई ना कोई एक सिस्टर बताती है, पता ही नहीं चला आज तो मेरी जोर चली गई, अरे असर की अजान हो गई, जोर किधर गई? तो अब मैं और आप तो कुरान वाले हैं, सारा दिन मैं कुरान पढ़ाती रहूँ ना आपको, और मेरी अपनी नमाज मिस हो गई या मैंने केयर नहीं की, हिफाजत नहीं की, तो वल्ला ही मेरे पढ़ाने से आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए यहां बैठ के नियत करें। और शैतान भी इतना मरदूद है कि वो हमें कहता है सारा काम ही मैंने वो नमाज के वक्त पे करना है। चूल्हा बंद, कंप्यूटर बंद, फोन बंद, पहले नमाज पढ़ूंगी। देखिए ना, आपकी माँ आपको बुलाए या आपका शौहर आपको बुलाए या आपका बॉस आपका शेफ आपको बुलाए, तो आप कहेंगे 15 मिनट बाद आऊंगी, फारिग होके आती हूँ, कुछ कर रही हूँ, जी 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 यस आई एम कमिंग, यस प्लीज। तो यस प्लीज, यस प्लीज इधर तो है, दूसरों पे क्यों नहीं है? तो नमाज बंदे को अल्लाह ताला के साथ जोड़ती है। और याद रखिए कि नमाज की कमी आपकी हर चीज का पोल खोल देगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आपको नमाजों का बेहतरीन हिस्सा बना करवाए। एक चीज लिख लें, सला, स्वाद लाम वाव इसका रूट है ना, तो असला पुश्त का दरमियानी हिस्सा, ये जो हमारी कमर के बै, ये थे ना कूले का डहलवान का वो हिस्सा जिस पर जानवर की धूम लगती है। नमाज के अंदर यानी आप देखें ना, तो खड़े होने का और जमने का एक मानी आ जाता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे कदम जमा देता है, हम मजबूत हो जाते हैं। अच्छा वस्ता क्या है इधर, वसत से, वजालना को मोहम्मद वसत आपने पढ़ा, दरमियानी। अब ये कौन सी है, पांच नमाजों में दरमियानी देखें तो असर, फजर जोहर और उधर मगरिब इशा, बीच में ये है। वसत को अगर मिडल के मानों में लें, लेकिन आपको था कि वसत पीछे भी आपको तीनों मानी लिखा है, तो मतलब वसत में कीमती आला, तो पांचों नमाजों में सबसे कीमती चीज असर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी सलातुल वुस्ता फौत हो गई, वो गोया कैसे कि उसके घर, उसका माल, उसके बच्चे सब कुछ तबाह हो गया। इमेजिन करें कितनी बड़ी महरूमी है ये। और असर की नमाज यकीन करें अक्सर लोगों की जाती है, बच्चों को खाना दे रहे थे, बच्चों को पिक कर रहे थे, मर्द के आने का वक्त था, ये था वो था, तो सलातुल असर की हिफाजत ज्यादा। और आपको तो ये मशहूद फरिश्तों के हाजिर होने का टाइम होता है, ड्यूटी चेंज होती है, सुबह से जो आते हैं फरिश्ते वो असर तक रहते हैं, फिर असर से फजर तक। तिर्मिजी की रिवायत है कि सलातुल वुस्ता सलातुल असर, असर की नमाज है। गज़वा खंदक के मौके पे आपने कहा था कि अल्लाह काफिरों के घरों को आग से भर दे कि इनकी वजह से हमारी सलातुल वुस्ता चली गई, ये बुखारी की रिवायत है। और याद रखे कि मेरे आपके इस दवाजी ताल्लुकात या इंसानी ताल्लुकात कब ठीक होंगे, जब हमारी नमाजें ठीक होंगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक होगा। और ये सब कुछ इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह ताला आसान भी कर देता है। जो नमाज पढ़ता है उसके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत मदद है। इब्ने हब्बान की एक रिवायत है अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास से कि अल्लाह के नबी ने एक दिन नमाज का जिक्र किया, फिर फरमाया जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की क्यामत के लिए ये नूर बुरहान और निजात का बायस होगी, यानी लाइट होगी। जिसने ना नमाज की हिफाजत की यानी नमाज ना पढ़ी, कभी पढ़ी कभी नहीं, केयर नहीं की, तो इसके लिए ना नूर होगा ना बुरहान होगा ना निजात होगी। और क्यामत के रोज इसका अंजाम कारून, फिरौन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। आपको पता है ये चार बड़े बड़े क्रिमिनल्स गुजरे हैं जिनका नाम इधर रखा गया। रियली इस पे काम करें, बच्चों के साथ बैठकर अपने साथ। नमाज इंसान की तरबियत करती है, बुलंद मुकाम देती है, साबित कदमी देती है, मुहज्जब बनाती है, जरा ठहराव आ जाता है। और कूमु लिल्लाहि कानितीन, कनूत कहते हैं जम के खड़े होने को, आजजी और दवाम। कानितीन से मानिए मुतीईन, फरमाबरदार बन के खड़े हो जाओ। आपको तो पहले लोग नमाज में बात कर लिया करते थे, जैसे आज भी जरूरत के तौर पर तवाफ के दौरान बात की जा सकती है ना, पहले नमाज में भी करते थे। जब ये आयत नाजिल होगी इसके बाद फिर बात करने की इजाजत खत्म हो गई। मुराद ये कि उस वक्त तुम्हें लगे कि किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। ये बुखारी की रिवायत है 4534 नंबर की। फइन खिफ्तुम फरिजालन रुकबानन, रिजाल किसको कहते हैं, पैदल चलने वाले को, रिजल से, और रुकबान सवारी पे। इतना भी मामला गड़बड़ है कि नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं, सलातुल खौफ कहते हैं इसको, इसकी डिटेल्स आएंगी सूरत निसा में। या मिसाल दे दी कि खौफ की कैफियत तो फिर भी नमाज पढ़नी है। फैजा मंतुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, यानी बवक्त मजबूरी तो जिस तरह मुमकिन है, वेन और हाउ और वेन एवर, या जैसे भी करना पड़े करो, लेकिन आम हालात में दोबारा नमाज जब पढ़ो तो बेहतरीन तरीके से पढ़ो। इतना खूबसूरत दीन है, इसको कहते हैं दीन भी रखो दुनिया भी रखो। दीन और दुनिया के बीच में तवाजुन यही होता है, यानी कि नमाजें छोड़ दो। और याद रखिए कि नमाज की हिफाजत वही है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के किसी काम में पड़े हुए हो, दिल अल्लाह की तरफ हो। पीछे एक जुमला लिखाया था आपको कि हम हालत नमाज में हम हर वक्त नहीं रह सकते, कैफियत नमाज में हर वक्त रह सकते हैं। और वो बड़ा प्यारा शेर है किसी का कि सरकशी न करती है धुंधले नकूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लोहे जबी ताजा करें। हम दिन रात छोटे छोटे गुनाह करते रहते हैं, बड़े भी करते हैं, तो नमाज के अंदर वो गुनाह हमारे अल्लाह के हुक्म से माफ हो जाते हैं। ये जो बात है ना फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, इसमें एक बहुत अहम रूल है, जिक्र भी मनमाने तरीकों से नहीं करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं जिक्र करो, अल्लाह करो, पानी डालो, ये करो, मन माने तरीके से 500 दफा इस तस्बीह को पढ़ो, ये करो। कमा अल्लमकुम, जैसे जिस तरीके से सिखाया, नमाज का तरीका सल्लू कमा राई तुमोनी उसल्ली, और जिक्र के लिए भी जो अल्लाह ताला ने बातें कह दी उसी को करो। आपको तो नमाज किसने सिखाई थी नबी सल्लम को? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। जब वाक मेराज हुआ, आप पे नमाज फर्ज हुई, उसके अगले दिन जिब्राईल आए, दो दिन आते रहे, पहले दिन इब्तदाई वक्त में और दूसरे दिन तहाई वक्त में नमाजें पढ़ी और कहा कि इन दोनों के बीच में नमाज है। कितनी इज्जत है, पूरी शरीयत जमीन पे मिली और नमाज के लिए आपको ऊपर बुला लिया गया। तो इसलिए इसको प्रोटोकॉल दें, इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। अब आखिरी आयतों में दोबारा मौजू को रैप अप किया जा रहा है। आयत नंबर 240, वल्लज़ीना युतवफ़ाउना मिनकुम, और वो तुम में से जो फौत हो जाएं। अच्छा, सबक का शुरू भी यही था ना, वो आयत क्या थी, मैंने आपको लिखाया था बात कुछ कि वो बाद का हुक्म है। ये आयत जो आप पढ़ने लगे हैं ना, ये वो है जो मैंने आपको बताया कि इस्लाम से पहले औरत की इद्दत 1 साल थी, उसका हिंट है। यानी ये आयत को बड़ा बड़ा लिख लें, ये मनसूख है, वरना कॉन्ट्राडिक्शन होगा। पीछे तो 4 माह 10 दिन पड़ा, यहाँ 1 साल की बात है। तो ये आयत अभी तरतीब में हम बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहले उतरी थी और इसके बाद दूसरी आयत ने इसको मनसूख कर दिया। क्या करें ऐसे मर्द जो फौत हो जाए, वसीयत लिए अज़वाज ही मतान इलल हौली गैर इखराज, तो वो वसीयत कर दें अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक के लिए नान नफके की, बगैर इसके कि इनको घरों से निकाला जाए। मसलन एक शख्स फौत हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं, जिनमें से एक के पास औलाद है, बाकी 3 इस औलाद की सौतेली माएं हैं। अब ये औलाद सगी माँ को तो अपनी माँ समझ कर खिदमत करेगी, बाकी 3 को ख्वामखा की जिम्मेदारी या लाइबिलिटी समझेगी। तो कहा भी ये नहीं है कि बाकी 3 बीवियां उनको निकाल दो, बेवाएं हैं, अपना रास्ता लो, तुम्हारी शादी हमारे बाप से हुई थी, वो फौत हो गया, अब जाओ। कहा नहीं, उनको रखो। ये आज के दौर के एक, मतलब इसको कह सकते हैं कि एक लाइट सा हुक्म इस पे लिया जा सकता है, लेकिन ये कि आम तौर पे ये आयत उसी सेंस में आती है कि एक साल तक पहले रखा जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कानून वरासत अब नाजिल हो गया है, बीवी को अपने शौहर में से माल मिल जाता है, लेकिन ये सब कुछ उससे पहले का था कि चलो कम अज कम एक साल तक उसको रखो। फाइन खरज ना फला जुनाह अलैकुम, फिर अगर वो खुद निकल जाए तो फिर कोई गुनाह नहीं तुम पर। फी मफाल नफी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ, अगर वो औरतें खुद निकल जाएं तो तुम पर इसका कोई गुनाह नहीं। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। बात आसान है, एक साल तक औरतों को रहने की बात, इसकी तत्बीक यही है कि बेवा औरतों के साथ एहसान का मामला करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरास वसीयत सारे कामत लाजिम है, 4 माह दसिंग के बाद वो औरत कुछ भी मामला करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इशारा है इसमें कि औरत पे जुल्म ना करो और ऐसी औरतों को तकलीफ ना दो। फिर इस मौजू के अब आखिरी आयत, जिसपे अब ये आयली कवानीन और जो भी घरेलू मामला थे वो पूरे होते हैं। फरमाया वलिल मुतल्लकाती मताउम बिल मारूफ, और तलाक वाली औरतों के लिए फायदा उठाना है मारूफ तरीके से। बार बार देखिए ये मौजू आ रहा है, बार बार ये मौजू आ रहा है, कैसे फायदा उठाना है मारूफ तरीके से। हक्कन अलल मुत्तकीन, हक है मुत्तकियों पे, पीछे क्या था, हक्कन अलल मुहसिनीन, यहां मुत्तकी जरा कम दर्जा, यानी ये हिदायत इद्दत के वक्त तक है, इसके बाद नहीं है। इस मामले में इद्दत के दौरान तो खास तौर पे उस औरत का मामला रखा जाएगा, बाद में भी दूसरे लोग उसको देखेंगे। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, इसी तरह अल्लाह ताला तुम बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी निशानियां, ताकि तुम अकल से काम लो, समझ बूझ इख्तियार करो। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने विमेन राइट्स की बहुत श्योरिटी ली है। औरत अपनी जात से कमजोर होती है, उसके ऊपर अल्लाह ने मुआश का बोझ नहीं डाला। अब आप बताइए कि एक तरफ अल्लाह के ये दिए हुए कवानीन और दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटी, यहाँ औरत को मर्द और मर्द को औरत से बिल्कुल फर्क नहीं रखा जाता, दोनों सूरतों में एक ही चीज है। तो बाज लोग कहते हैं अच्छा औरत कमाएगी नहीं तो क्या करेगी, औरत ये नहीं करेगी। तो आप देखिए कि इस्लाम आ जाएगा ना तो ये सारे इंतजाम तो पहले से हुए हुए हैं, कोई दूसरा बीच में आने की कोशिश भी करेगा तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो ये सब कुछ पढ़ने से और ज्यादा इस बात का यकीन हुआ कि अल्लाह अल्हादी है, और वो हमें जिंदगी गुजारने का हर तरीका सिखाता है। पैदा करके उसने मुझे आपको छोड़ नहीं दिया कि जाओ आप अपनी मर्जी से धक्के खाओ और जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह की जात बंदे के लिए हर तरह के इंतजाम भी करते हैं और उसको अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون